करवटे बदल रहा, युग ने ली अंगड़ाई,
जाग उठी भारत की नारियां, शिव से शक्ति पाई,
वंदे मातरम करे जगत,
श्रद्धा भाव समर्पण,
आओ करें दृष्टि परिवर्तन, नारी को नहीं नारित्व को देखें, एक वैचारिक क्रांति।
ओम शांति, मैं हूं अमन वर्मा और हमारे इस सफर में ब्रह्मा कुमारी के गॉडलीवुड स्टूडियो में हमें ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने हमारे साथ मौजूद हैं पिछले 50 सालों से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सेवारत, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाली वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी दीदी जी। चक्रधारी दीदी जी जितनी सरल और मधुर प्रवक्ता हैं, उतनी ही प्रभावशाली उनका व्यक्तित्व है। न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई कोनों में आध्यात्म की छाप छोड़ने वाली चक्रधारी दीदी वर्तमान में दिल्ली के साथ रूस और अन्य गणराज्यों में महानिदेशक के रूप में भी सेवारत है और ब्रह्म कुमारी के महिला विंग की चेयरपर्सन भी है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा इनका। प्रणाम, ओम शांति।
ओम शांति, ओम शांति।
दीदी आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में हमें कुछ बातें बताने के लिए। तो शुरुआत आप ही के साथ करते हैं। मुझे ये बताइए, हम ये जानना चाहते हैं कि नारी के ये जो आठों शक्तियां हैं इनके बारे में मैं चाहता हूँ कि विस्तार में आप मुझे और हमारे जो ऑडियंस है और वहाँ जो लोग हैं इन्हें बताएं।
मैं समझती हूँ पहले हमारी तैयार हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है
जी,
पहले उसे देख लिया।
पहले डॉक्यूमेंट्री फिल्म, चलिए तो पहले डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखते हैं, उसके बाद आपसे पूछेंगे कि विस्तार में आप क्या बोलना चाहते हैं। आइए देखते हैं।
आदर्श नारीत्व अर्थात शक्ति स्वरूपा नारी, नारी की शक्तियां अपार हैं, लेकिन उनमें से आठ मुख्य शक्तियां गायी हुई हैं। यदि अष्ट शक्तियों में से एक भी शक्ति की कमी हो तो नारी पूजनीय और विश्वसनीय नहीं बन सकती है। जब हम नारी की अष्ट शक्तियों के बारे में बात करते हैं तो एक अष्टभुजा वाली देवी दुर्गा का चित्र हमारे सामने आ जाता है, जिसकी प्रत्येक भुजा हर एक शक्ति को संबोधित करती है। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति उसकी एक ऐसी भुजा है, जैसे एक कछुआ अपने दुश्मन को देखते हुए तुरंत अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है और जब भी उसे कर्म करना है तब अपनी इंद्रियों को बाहर ले आता है। वैसे ही नारी दिन भर विभिन्न रूप, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, समाज सेवा निभाती है, लेकिन जब देखती है कि वायुमंडल में नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, तो तुरंत अपने आत्मिक शक्ति स्वरूप में स्थित हो जाती है। इससे उसका परिस्थिति को देखने का दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है। जब उसे अपने पियर घर से ससुर घर जाना रहता है तो यात्रा में हल्के रहने के लिए उसे वह सब कुछ पीछे छोड़ देना पड़ता है। मायके का आंगन, मात पिता, भाई बहन, सहेलियों का साथ, यह सब वह आसानी से कर लेती है क्योंकि उसके पास समेटने की शक्ति की भुजा है, जिससे वह अपने मन के व्यर्थ और भूतकाल के विचारों को समाप्त कर सरलता से जीवन में आगे बढ़ती है। उसके सास के गुस्से के पीछे नारी उसकी सास के भाव को समझती है, इसीलिए अपनी सास के गुस्से को सहन कर लेना बहुत आसान हो जाता है। वह अपने बच्चे के लिए भूखी रह जाएगी, लेकिन बच्चे को खाना जरूर खिलाएगी। वह अपने पति के स्वास्थ्य के लिए दीर्घ आयु के तप उपवास भी करती है, फिर चाहे उसका पति उसका सम्मान करे या ना करे। उसकी इन फलों से लदा वृक्ष के समान सहन करने की शक्ति की भुजा उसके विवेक और सूझबूझ को दर्शाती है। घर के सभी सदस्य विभिन्न स्वभाव संस्कार वाले हैं, फिर भी बड़े दिल से उन्हें स्वीकार कर लेने के कारण सभी की कमी कमजोरी अपयश यश को समाकर सागर के समान समाने की शक्ति भी उसकी एक भुजा है। एक जौहरी को जैसे हीरे और पत्थर की परख होती है, वैसे ही शक्ति स्वरूपा नारी को गलत और सही की पहचान होती है, क्योंकि वह अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र से मनुष्यों के भाव को पढ़ लेती है। उसकी यह परख की भुजा उसे व्यक्ति और परिस्थिति के बुरे इरादों से बचाती है, और इसीलिए उसकी निर्णय शक्ति की भुजा भी शक्तिशाली हो जाती है। कहां उसे मालिक बनकर राय देना है तो कहां उसे बच्चापन चुप रहना है, कहां कोमलता से पेश आना है तो कहां उसे दृढ़ रहना है, कहां उसे स्नेह का प्रयोग करना है तो कहां शक्ति का। यह निर्णय ठीक से लेने के कारण उसका जीवन रूपी तराजू संतुलित रहता है। चाहे कितने भी तूफान उसके जीवन में क्यों न आते हों, उसके मन रूपी दीपक में बसी हिम्मत की बाती सदा जलती ही रहती है। यमदूत से भी लड़ने का साहस रखती है। इतनी सामना करने की शक्ति एक नारी ही की भुजा में है। जब कभी भी उसके घर परिवार में पहाड़ जैसी विपत्ति आई है, उसके अपने उसके पराये बन गए हैं, उनसे किनारा करने के बजाय अपनी विशेषताओं का सहयोग उन्हें दिया है, अपनी शुभ भावना का सहयोग देकर झुककर औरों को भी झुकाने की शक्ति है उसकी भुजा में। भगवान शिव ने भी संसार परिवर्तन के भव्य कार्य में नारी को कलश प्रदान किया है। इन सभी शक्तियों की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ परमात्मा शिव द्वारा ब्रह्मा कुमारीज में सिखाए गए राजयोग मेडिटेशन द्वारा ही हो सकती हैं। इन्हीं अष्ट शक्तियों को अस्त्र के समान कर्म क्षेत्र में प्रयोग करने पर शक्ति स्वरूपा नारी एक सशक्त वैचारिक क्रांति लाने के निमित्त बनती है। यह है नारीत्व दर्शन।
ये थी हमारी डॉक्यूमेंट्री, और अब दीदी बताइए हमें।
मैं ऐसा समझती हूँ कि इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म से बहुत ज्यादा सबको स्पष्ट हो चुका होगा, फिर भी मैं ये कहूँगी, अगर आप छोटी छोटी बातों को सुनते हुए बोझिल हो जाते हो या भारी हो जाते हो, इसे सहन करना या समाना नहीं कहा जाएगा।
अच्छा।
सहन करना इसे कहा जाता है सहन शक्ति। मानो सहन करने से आप में शक्ति बढ़े,
सहन करने से शक्ति बढ़े,
शक्ति बढ़े, और सहनशीलता, जितना सहन करेंगे उतनी आपके अंदर शील पवित्रता की भावनाएं और बढ़ती चली जाएगी। इसे कहा जाएगा सहन करना और सहनशील बनना। सहन करने का मतलब बोझिल होना नहीं, भारी होना नहीं।
बहुत खूब। क्या कारण है कि सभी देवता देवी माँ जगदम्बा के कदमों में अपना आशीष झुकाते हैं? नारी की शक्तियाँ ही इसका कारण है। नारी की इन शक्तियों व गुणों को बारीकी से जानेंगे हमारे खास मेहमान से। कौन है वो खास मेहमान जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
अगला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, तेरी चमड़ी का सौदा होता है, तुम वस्तु बन गई हो,
मुझे शक्ति दो,
कमजोर बताना बंद करो, ये फूल नहीं चिंगारी है, इसे सताना बंद करो, सबला भारत की नारी है। धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर नारी के शरीर को ना देख उसमें आत्मदर्शन नारीत्व दर्शन करें। देखना ना भूलिएगा, विनर ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट नेशनल अवार्ड, नारीत्व दर्शन।
नारीत्व दर्शन।
आओ करें दृष्टि परिवर्तन, नारी को नहीं नारित्व को देंगे एक वैचारिक क्रांति।
ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी चर्चाओं के जरिए आपकी जिंदगी में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कुछ ऐसी अनुभवी शख्सियत को अपने मंच पर बुलाते हैं जिनके व्यक्तित्व और जीवन जीने का तरीका हमें जीवन के प्रति सम्मान की भावना देता है। विश्व के दूसरे नंबर के सिविक बॉडी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के शाहदरा साउथ जोन की डिप्टी कमिश्नर, असेसर और कलेक्टर रेवेन्यू, जिन्होंने पिछले साल रेवेन्यू कलेक्शन को डबल करके दिखाया। ऐसी असाधारण महिला अलका आर शर्मा जी का आज हम स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। आइए बैठिए। अलका जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने का। बहुत सारी बातें आपसे करनी है, दीदी भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो शुरुआत आप ही के साथ करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे आई हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या है नारी की अष्ट शक्ति का महत्व उसके जीवन में, पहले ये बताइए।
नारी शक्ति का महत्व मेरे लिए एज अ हाउसवाइफ और एज अ एडमिनिस्ट्रेटर दोनों ही है। दफ्तर में लोग आते हैं, उनको समझना, उनको परखना और उसके बाद सही निर्णय लेना, इसमें नारी शक्ति का बहुत प्रयोग होता है। घर में अपने बच्चों के साथ सहनशीलता का परिचय देना, इसमें नारी शक्ति का बहुत महत्व है। और किसी भी बात को बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं, उसको सार समझ के उसको संक्षेप में खत्म कर देना, ये नारी शक्ति का रूप है।
बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही कमाल की बात आपने कह डाली। अब हम सुनेंगे उन महिलाओं की स्थिति जो बन नहीं पाई सही मायने में शक्ति।
आजकल देखा जा रहा है कि औरतों में गुस्सा, अहंकार और सहनशीलता की कमी आती जा रही है। इस वजह से घर टूट रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, बच्चों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। कुछ औरतें अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर रही है, इसलिए यह सब हो रहा है।
मुझे लगता है जितनी छोटी फैमिली उतनी अच्छी होती है, एडजस्ट करना आसान हो जाता है, वरना बड़ी फैमिली में रोक टोक हो जाता है, ए मत करो ओ मत करो, इसलिए न्यूक्लियर फैमिली बड़ी अच्छी होती है।
शक्ति का उचित उपयोग समाज कल्याण के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन जब शक्ति का उपयोग गलत दिशा में होने लगे तो घर परिवार और समाज में दिक्कतें उत्पन्न करने लगता है। दीदी ये सवाल आपके लिए है। आजकल ऐसा भी होता है जैसे अगर हम त्याग की बातें करें या सहनशीलता की बातें करें तो ये गुण उन्हें कमजोर भी बनाते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
मान लीजिए कोई मेरे से दुर्व्यवहार करता है और मैं सहन ही करती चली जाऊं, इसका मतलब है कि मेरे मन में सर्व प्राणी के लिए कल्याण की भावना नहीं है। मैं उसे गलत कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हूँ, नहीं। अगर मुझे श्रेष्ठ बनना है तो दूसरे को भी श्रेष्ठ मुझे बनाना है, इसलिए जो चीज ठीक नहीं गलत है उसे गलत ही कहना उचित हो और उसके साथ वो व्यवहार होना चाहिए जो मेरी बात को वो समझे और समझकर वो अपनी गलती का एहसास कर सही मार्ग पर चल सके। बाकी वो गलत कर रहा है, मैं कहूँ मुझे तो सहन करना है, नहीं, इस हालत में सहन करना ये सहन नहीं, दूसरे प्राणी को गलत रास्ते पर प्रोत्साहित कर।
अपनी शक्तियों को समझने और उसे उचित उपयोग के लिए नारी अध्यात्म का सहारा ले सकती है। आध्यात्मिकता आपको मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त और संतुलित बनाती है। कुछ बहनों ने जीवन में अध्यात्म को अपनाया और जीवन में बदलाव लेकर आई है, तो आइए उन कहानियों के बारे में पहले हम सुनते हैं।
मैं अपने गांव में शिक्षण संस्था खोलना चाहती थी, मेरा ऐसा विचार था, मगर अकेले की बात नहीं तो मैं महिला संगठन में जाकर मेंबर को बताया तो मेरे को उसने चालना दे दी। मेरा इरादा नेक था इसलिए मेरे को सबका सहयोग मिला।
मेरी शादी को 2 साल हुए हैं और 2 महीने का मेरा बच्चा है। मेरे पति को हार्ट अटैक से देहांत हो गया। मैं एक शिविर में आई हूँ, ब्रह्मा कुमारी राजयोग के अभ्यास से मुझे बहुत शक्ति मिल रही है।
शक्तियों का सकारात्मक उपयोग बहुत जरूरी है। दीदी, ये सवाल आपसे कि कैसे नारी अपनी शक्तियों की जो असली हुनर है उसे कैसे पहचाने और उसे कैसे सकारात्मक राह पर लेकर आए, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा।
मैं ऐसा कहूंगी कि महिलाओं में कई बार कुछ ज्यादा बोलने की आदत है और दूसरा छोटी छोटी बातें कुछ भी होती हैं वो अंदर बहुत ज्यादा, बाहर से नहीं बोलती तो अंदर बहुत बोलती, जिससे कि उनकी बहुत शेष शक्ति वेस्ट हो जाए। इसलिए बहुत सबसे पहले ध्यान रखने की जरूरत है कि जहाँ आवश्यकता है वहाँ बोला जाए, जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और कई बातें ऐसी हैं कि जिनको अंदर समाने की आवश्यकता रहती है, लेकिन समाकर उस बात को चिंतन अंदर चलता रहे, बाहर से आप नहीं बोल रहे, अंदर से आप बोल रहे, और जब अंदर से ज्यादा बोलते हैं तो वो बोल जब आपका बाहर से निकलता है तो अंदर का बोल आपको कमजोर कर चुका होता है। इसलिए आपके बोल का इफेक्ट दूसरे को नहीं हो पाता। इसलिए अगर आपने अपनी शक्तियों का सही प्रयोग करना है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि मेरी कोई भी शक्ति वेस्ट ना जाए।
अलका जी, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या करेंगे?
मैं एक बहुत ऑर्डिनरी हाउसवाइफ और एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में ये समझती हूँ कि इन शक्तियों से हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आता है। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आने से हमारा जैसे सामने का शीशा एकदम साफ हो जाता है, मतलब हम देख पाते हैं कि जो हम चाहते हैं वो वास्तव में कर पाएंगे कि नहीं। और अगर हमारे थॉट्स पॉजिटिव हैं तो जो दूसरा है जिससे हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो भी बात हमारी मानने के लिए बाध्य हो जाता है। प्रोवाइडेड यू आर हैविंग अ पॉजिटिव थॉट और आप चाहते हैं कि इससे किसी का भला हो। किसी का भला तभी होगा जब मेरा स्व भला हो। इस तरह के सकारात्मक सोच होने से दूसरा व्यक्ति भी हमारी बात समझकर वही करता है जो हम चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें मेरे साथ उसका भी भला है। जैसे मेरी टीनेज डॉटर है, कई बार ऐसा होता है वो उम्र के उस पड़ाव पे है कि मैं उसकी बात नहीं समझ पाती या वो समझती है कि माँ जो बातें कह रही हैं वो अगर लड़के पे लागू है तो मुझ पे लागू क्यों नहीं है। क्योंकि मैं दिल्ली को बिलोंग करती हूँ, वहाँ का वातावरण थोड़ा आजकल माँ होने के नाते मुझे थोड़ा घबराहट देता है अगर मेरी बेटी बाहर जाती है, तो मैं चाहूंगी कि वो इस किस्म के कपड़े ना पहने या इस समय ना जाए। वो ये कहेगी कि जब भाई जा सकता है तो मैं क्यों ना जाऊँ। तो मैं उसको एटलीस्ट आई एम एबल टू कन्वे माई थॉट्स टू हर, वो ये अप्रिशिएट कर पाएगी कि जो माँ मेरे लिए कह रही है ये मेरे भले के लिए है। जस्ट केवल उसको रिबेल करने के लिए वो नहीं कहेगी, ऐसा मुझे महसूस होता है अगर मैं अपने थॉट्स में क्लियर हूँ और मैं अपने थॉट्स में बिल्कुल पॉजिटिविटी चाहती हूँ।
वंडरफुल, हमारी बात यही थी, अगर आप अपने थॉट्स में पॉजिटिव हैं तो सामने वाले तक वो बात अवश्य पहुँचेगी। नारी के जीवन में शक्तियों के अलग अलग रूप का समायोजन है जो उसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देते हैं जिसे वो काफी हद तक बखूबी निभाती है, लेकिन कभी कभी उसका प्रभाव गलत दिशा की ओर भी जाने लगता है। तो उस समय यदि अध्यात्म का सहारा ले तो नारी के जीवन में बहुत उपयोगी है। और ऐसे कई पहलू हैं नारी शक्ति के, कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढेंगे हम, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्लीज कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद आप लोगों से फिर मुलाकात है।
ब्रह्मा कुमारी से प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निःशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8,000 से अधिक सेवा केंद्र हैं।
का दर्शन कराए अर्थात कि नारीत्व शक्ति के बारे में बताएं। तो वो बेटा अपनी बहन के साथ फर्क नहीं करेगा, वो भाई अपने बहन के साथ फर्क नहीं करेगा, उसको बचपन से ही उसको वो चीज उस देवी के रूप में।
आप भी देखिए
नारित्व दर्शन।